Hare Krishna. How many of you would like to know the significance behind this today's Ekadashi, please?
आप में से कितने लोगों को आज की शक्तिराय एकादशी के महत्व के बारे में ज्ञात है?
Only one person wants to know.
Okay, आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं?
Okay, good. Because they're always very important historic narrations.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं रहती हैं एकादशियों के महात्म्य के पीछे।
So let us say the Guru Parampara pranams please.
तब गुरु ब्रह्मा ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति दत्त स्वामी के नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानते मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं तेहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पञ्चशाखापतिरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर भक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्ण हरे So this is called Satila Ekadasi or Trishpisha Ekadasi.
तो इसको त्रिशपर्षा एकादशी या फिर षट्तिला एकादशी के रूप में जाना जाता है।
Now it's interesting that the Srimad Bhagavatam says once upon a time.
तो श्रीमद् भागवतम में भी कहा जाता है कि once upon a time एक बार की बात है।
You know, it's there in the Sanskrit millions of years old. It's once upon a time.
तो इसका अर्थ है कि कई शताब्दियों सहस्राब्दियों पहले कई लाख सहस्राब्दियों पहले
but in the west especially and I suppose in India also around the world it's been that phrase has been adopted into storytelling once upon a time you know could be anything a total mythology you know
तो पाश्चात्य जगत में भी और भारत के अंदर भी ये जो फ्रेज है ये जो कहावत है एक बार की बात है once upon a time ये जो है और भी अन्य कहानियों मनगढ़ंत कहानियों के लिए भी जो है यू इस्तेमाल होता है
But in the Vedic tradition once upon a time is not mythology so what we're going to hear is not mythology great stories but real history
तो लेकिन वैदिक साहित्य के अंदर जब ये इस्तेमाल होता है कि एक समय की बात है तो ये कोई मनगढ़ंत या मनोकाल्पनिक कहानियां नहीं है rather ये अपितु सत्य है सत्य घटनाएं हैं
So once upon a time a great rishi named Sri Dalbhyura Rishi said to Palastya Muni so this is Shravanam Kirtanam
तो एक बार दालभे ऋषि ने जो है पुलस्त्य मुनि से कहा
soul comes in contact with the soul of the sage The rishi asked.
To rishi ne pucha.
When the spirit soul comes in contact with the material energy, it immediately becomes begins to perform sinful activities.
To unhone bola ki jab ye jeev atma bhautik prakriti ke sampark mein aata hai, wo turant hi paap purna kritiyon mein jut jata hai.
Such as stealing, killing, and illicit sex.
Avai sambandhan, chori, ya fir hatya ityadi mein.
So here we see that illicit sex is lumped in with stealing and killing. So it's not a small thing. Although in the modern world today, the attitude is, what's the big deal? I'm sorry, but it's in the same category here we see from a great vision. It is in the same category as stealing and killing.
So,
what about the vision belongs them together? Same category, nothing less important as far as sin is concerned.
तो यहाँ पे इसको चोरी हत्या और अवैध संबंध तो यहाँ देखा जाता है कि अवैध यौनाचार जो है ये इसी कैटेगरी के अंदर था चोरी करना या हत्या करना हालांकि आधुनिक समाज के अंदर इस प्रकार से बोला जाता है कि इसमें क्या बड़ी बात है ये तो बहुत छोटा सा कार्य है कोई इसमें बड़ा चीज नहीं है लेकिन वैदिक साहित्य के अनुसार ये अवैध यौन संबंध भी चोरी और हत्या की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं
So the fallen soul may even perform many other terrible deeds. Such as killing a Brahman.
So,
personalities. Please tell me of those unfortunate persons' souls, how can they escape the punishment being sent to hell?
So, वो बोल रहे हैं कि दलभर ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि कभी कभी तो बहुत ही ब्राह्मण की हत्या जैसे जघन्य कार्य भी कोई व्यक्ति करता है तो हे शुद्ध जीवात्मा आप बताइए कि इस प्रकार के दुर्भाग्यशाली जीव किस प्रकार नरक जाने की यात्रा से बच सकते हैं
Please tell me how by giving a little bit in charity one may be easily released from the reactions of his sins
कृपा करके मुझे बताइए कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करने से कोई किस प्रकार से पाप कर्म से मुक्त हो सकता है
Here's another amazing feature of Shastra, the bold statements made by great sages.
तो यहाँ पे हम शास्त्रों के एक और रोचक पहलू भी और देखते हैं कि किस प्रकार ऋषियों ने इतनी महत्वपूर्ण सशक्त बात बोली है.
Pulastamuni replied, "O fortunate one, you've asked me an important and confidential question."
पुलस्त्यमुनि ने कहा कि हे भाग्यशाली जी तुमने मेरे से बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गोहिया प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न तो कभी ब्रह्मा विष्णु शिव जी और इंद्र ने भी नहीं पूछा है
then the sage begins describing things that should be given up during this month of Magh, January, February.
तो जो है वो पुलस्त्य मुनि ने उत्तर देना प्रारंभ किया कि किस प्रकार माघ के मेले में माघ के महीने में अर्थात जनवरी फरवरी का जो महीना चल रहा है इसमें किन किन कार्यों को छोड़ देना चाहिए
One should get up, give up lust, anger, pride.
तो बोला है कि आप अपने काम क्रोध क्रोध और मद को छोड़ दीजिए
And control the senses, of course. And one should give up fault finding also. So, We should take this as instruction that we should follow, although this was given perhaps millions of years ago.
अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, दोष आरोपण की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। तो इसको हमें आदेश के रूप में अपनाना चाहिए, हालांकि ये कई सैकड़ों हजारों करोड़ों साल पहले की ये चर्चा है।
So then, the list of things such as mixing cow dung with sesame should be given away and so forth. So these rituals, I'm not going to read all these rituals that can be done to, you could say, amplify the benefit of this ekadasi.
तो और ये बताया गया है कि गाय के गोबर के साथ कुछ तिल के दानों को मिक्स करना चाहिए कुछ रुई को और ऐसी 108 बॉल बनाने चाहिए तो इस प्रकार के और रिचुअल हैं कुछ प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एकादशी का अधिकतम फायदा ले सकते हैं लाभ उठा सकते हैं
And then the 108 balls of cow dung mixed with sesame should be offered into a sacrificial fire for the pleasure of Lord Vishnu.
और इस प्रकार की गाय के गोबर के साथ और तिल के और रुई के गेंद बना करके 108 गेंद बनाकर उसे यज्ञ में डालना चाहिए, यज्ञ में आहुति डालना चाहिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए.
The devotee should pray, O Lord Shri Krishna, you are the most merciful personality of Godhead and the giver of liberation to all fallen souls.
तो जो है इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, हे पति पावन भगवान श्री कृष्ण, आप बहुत ही दयालु हैं और सभी बद्ध जीवात्मा को मुक्ति देने वाले हैं.
Please accept these humble offerings.
आप कृपा करके ये
आहुतियों को
स्वीकार कीजिए.
Proper mood for making offerings. Please accept these humble offerings.
तो ये बहुत ही अच्छा भाव है भगवान को भोग अर्पण करने का कि हे भगवान इन तुच्छ सामग्रियों को स्वीकार कीजिए.
To understand that this is real culture. Now, it's not obsolete, it's not archaic, simply because it was millions or hundreds of millions or thousands of years ago. It's not archaic, it's not, you know, obsolete simply because millions of years ago, thousands of years ago. Never.
वास्तविकता में देखा जाए तो यही सही संस्कृति है. ऐसा नहीं कि एक कई हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हुआ था, तो ये बिल्कुल इसका कोई आज की डेट में इसका कोई उपयोगिता नहीं है.
So one should please a qualified Brahman with a warm welcome.
और जो है एक योग्य ब्राह्मण को अच्छा उसका सत्कार करना चाहिए, स्वागत सत्कार करना चाहिए और उसके पसंद करने का प्रयास करना चाहिए.
Generally, at this temple, the reception of guests is pretty good as far as, but not just VIPs. The point is that, many unknown Brahmins may come here. They should be welcomed also, not just VIPs. This is clearly the mood given in the Shastra here.
तो ये मंदिर में तो जो अतिथि आते हैं उनका तो सत्कार किया जाता है, लेकिन केवल वीआईपी अतिथियों का नहीं, हमें सभी अतिथियों को स्वीकार करना चाहिए विशेष करके, क्योंकि कई बार अनजाने में भी कई सारे योग्य ब्राह्मण आ सकते हैं और यही शास्त्रों में किसको अतिथि सत्कार करना चाहिए उसकी प्रक्रिया बताई गई है.
Once given charity, water, umbrella, pair of shoes, clothing, and requesting at the same time that the Brahmin bestow his mercy.
तो ब्राह्मण को जो है एक पूर्ण कुंभ, जल से भरा हुआ पूर्ण कुंभ लेना चाहिए, छतरी, जूता, कपड़ा, वस्त्र इत्यादि, और साथ में उसे प्रार्थना करनी चाहिए आशीर्वाद देने के लिए.
Doesn't mean you should give him Western style, like these Indian shoes now, the style with the you know, 5-inch empty point in the front with a square end, you know, that's the style, you know. Not that kind of shoe.
इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण को जो पाश्चात्य जगत के आजकल जो जूते चल रहे हैं उस प्रकार के जूते लेना, बाटा या एक्शन इत्यादि के.
In those days it would have been brahmachari shoes with the peg, you know. Of course, we see around the world that a significant number of brahmacharis are still wearing wooden shoes with a peg, although they've been updated to rubber.
तो अभी भी हम देखते हैं, ये जो बात हो रही है वो ब्रह्मचारी के खड़ाऊ की बात हो रही है. अभी भी हम देखते हैं कई जगहों पे कई सारे ब्रह्मचारी लोग लकड़ी के खड़ाऊ पहनते हैं और कई कई जगह पे वो रबड़ के जो है चप्पल उस प्रकार के पहनते हैं.
One may also donate a black cow.
और आज के दिन कोई काली गाय को भी दान में दे सकते हैं.
Now one should offer him a pot full of sesame seeds.
और जो है एक तिल के दानों से भरा हुआ घड़ा भी दान में दे सकते हैं ब्राह्मण.
So we see repeatedly throughout the Shastra the importance of sesame seeds in charity and jagna.
तो हम देखते हैं तिल के दानों की महत्वता दान में और यज्ञ में.
Every fire jagna that we perform includes sesame seeds.
हम कोई भी जब अग्नि कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर ये तिल के दाने हमेशा रहते हैं सामग्री हवन सामग्री में.
Then he says to the sage, black sesame seeds are especially suitable for formal worship and fire sacrifice.
तो जो काले तिल के दाने होते हैं वो भगवान की आराधना और यज्ञ करने में के लिए उपयुक्त हैं.
Well, white or brown sesame seeds are meant to be eaten by a qualified Brahman.
और सफेद या भूरे जो तिल हैं वो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भक्षण के योग्य हैं.
One who gives both kinds of sesame seeds to a Brahman is guaranteed to be promoted to the heavenly planets.
और जो काले और सफेद तिल के दाने दान में देता है आज के एकादशी के दिन निश्चित रूप से वह स्वर्ग लोक जाएगा शरीर को त्याग करने के बाद.
This एकादशी day.
आज के एकादशी के दिन.
Of course, we're not interested in going to the heavenly planets.
जो भक्त हैं वो स्वर्ग जाने में रुचि नहीं रखते हैं.
Even if Gurudev came and said, "Hi, Balaraba, would you like a sightseeing tour? I can drop you off at the heavenly planets if you like."
तो अगर गरुड़ जी आएंगे और बोलेंगे कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ और यदि आप कुछ टूर पर जाना चाहते हैं दर्शन के लिए तो मैं आपको स्वर्ग लोक लेके चल सकता हूँ.
How many of you think, "Oh, that's really cool. A ride on Garuda, and then he's going to take me and like drop me off for a while to heavenly planets." How many think that's a great idea?
तो आप में से कितने लोगों को अच्छा आइडिया लग रहा है कि आप गरुड़ जी के बैक पे बैठ के स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हैं?
He didn't understand the question. So, then other rituals that I'm not going to read are recommended for the sakasi.
अन्य सब rituals भी हैं जो मैं पढ़ने नहीं वाला.
Now, a story within a story. The great sage Devarshi Narada Muni, he once asked the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, "Mighty armed Lord, oh, you are so affectionate to your loving devotees, please accept my humble obeisances. Kindly tell me the result one obtains by observing fast on Satyalok Ekadasi."
तो एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भक्त वत्सल, हे भगवान, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और ये बताइए कि ये शक्तिला एकादशी का पालन करने का क्या परिणाम होता है.
When Krishna said, replies,
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
I shall narrate you an account of an incident that took place on the earth planet long ago.
तो भगवान ने कहा, ये युधिष्ठिर, मैं जो हूँ एक व्यक्तिगत साक्षी के रूप में मैंने जो घटना देखी थी उसका वर्णन मैं आपके सामने करता हूं.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे
राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 बोलो,
हरे कृष्णा
कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं एक ऐसी घटना का वर्णन करता हूं जिसका मैं स्वयं साक्षी था.
Long ago on earth there lived an old female brahmani who worshipped me every day with controlled senses.
बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी बुढ़िया ब्राह्मणी थी जो रोज प्रतिदिन मेरी सेवा करती थी अपनी इंद्रियों को निग्रह करके.
She very faithfully observed many fasts, especially on special days honoring me.
और वो बड़े श्रद्धा पूर्वक जो है उपवास रखती थी विशेष दिनों पर जैसे जन्माष्टमी रामनवमी इत्यादि भगवान के प्राकट्य दिवसों पर.
Like रामनवमी जन्माष्टमी विष्णुदत्तादशी एक्सेट्रा.
तो इन प्रकार के जो विष्णु तत्वों के आविर्भाव दिवस है उस पर व्रत रखती थी.
So her rigorous or severe fasting made her quite weak and thin.
तो इस प्रकार के उपवास रखने से वह बहुत ही दुर्बल और पतली हो गई थी.
She gave charity to Brahmins and to young maidens.
तो ब्राह्मणों को और कन्याओं को दान दिया करती थी.
And even planned to give away her house in charity.
और उसने ये भी योजना बनाई कि वो अपना घर भी दान में दे देगी.
Although this woman gave in charity donations to worthy people, the odd feature of her austerity was that she never once gave food to Brahmanas or the Devas.
तो हालांकि ये आध्यात्मिक मन वाली स्त्री जो है बहुत सारे योग्य लोगों को दान दिया करती थी, लेकिन उसके तपस्या में एक विशेष बात ये थी कि वो कभी भी ब्राह्मणों और देवताओं को भोजन नहीं दिया करती थी।
So Krishna was witnessing this.
और कृष्ण भगवान इस घटना को देख रहे थे।
She wasn't giving proper charity to Brahmins.
तो कि वो जो है ब्राह्मणों को योग्य दान नहीं दे रही है, उपयुक्त दान नहीं दे रही है।
Now, try to understand. Each and every devotee, Krishna is watching. So this, she may have been a highly advanced Vaishnavi, but don't think that Krishna doesn't watch if you just say Hare Krishna even once.
तो कृष्ण भगवान जो है वो प्रत्येक भक्त को देख रहे हैं. हो सकता है ये ब्राह्मणी बहुत उन्नत हो, लेकिन आप ये मत सोचिए कि यदि एक नया भक्त भी हरे कृष्ण जप करता है तो भगवान नहीं देखते हैं. भगवान ऐसे भक्त को भी देखते हैं.
What's your name, Prabhu?
सर्वानंद.
So if you're chanting Hare Krishna, Hare Krishna, and then Krishna looks up, oh, who's chanting my name? Who's chanting my name? Oh, it's Saranananda. Very good. What is he doing, anyways?
So
the principle that is proved in this narration here.
तो जब सर्वानंद प्रभु जप करते हैं तो भगवान देखते हैं कि कौन मेरे नाम का जप कर रहा है. ओह, ये सर्वानंद प्रभु है, तो बहुत अच्छा है.
Krishna doesn't only watch the Mahabhagavats or self-realized saints, but the so-called little devotees also Krishna watches.
तो कृष्ण केवल महाभागवतों को या संतों को नहीं देखते हैं, वो छोटे नए भक्तों को भी देखते हैं.
So Krishna was thinking, this fine woman has purified herself by fasting and all the auspicious occasions and by offering me devotional worship.
तो कृष्ण सोचने लगे कि ये जो स्त्री है उसने अपना इस प्रकार के महत्वपूर्ण दिवसों पर उपवास करके और मेरी उपासना करके अपने आप का अपना शुद्धिकरण कर लिया है.
Therefore, she certainly has become eligible to enter my personal abode, which is unattainable by ordinary persons.
तो साधारण लोगों द्वारा नहीं प्राप्त ये अप्राप्य जो भगवान का धाम है उसे प्राप्त करने के लिए स्त्री योग्य हो चुकी है.
So I came down to this planet to examine her, disguising myself as a follower of Lord Shiva.
तो मैं जो हूँ उसका उसकी परीक्षा लेने के लिए मैं वेश बदल के आया. मैं एक भगवान शिव के अनुचर के रूप में के का वेश धारण करके आया.
Complete with a garland of skulls draped around my neck and a picking pot.
एक हाथ में कमंडल लेके और जो है गले में शीशों की या मुंड की माला धारण किए हुए.
So we have to be careful because sometimes Krishna comes in disguises and then tests the devotee. I mean, you know, of course we're very low quality devotees, but still, the principle is there. Krishna is testing us, whether he's physically coming or not, but Krishna is testing his devotees. So this is an illustration of how he tests a devotee by assuming disguises.
तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि भगवान कभी कभी वेश बदल के अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं. हालांकि हम तो बहुत ही नौसिखिए छोटे भक्त हैं, लेकिन फिर भी सिद्धांत यह है कि कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अलग वेश धारण करके आते हैं.
As I approached her in disguise, Krishna said, she said, "O respected one, tell me truthfully, why have you come before me?"
तो जब मैं इस प्रकार से वेश धारण करके आया तो उस स्त्री ने मेरे से पूछा कि कृपा करके बताइए कि आप यहाँ पे किस प्रयोजन से आए हैं.
I replied, Krishna says, "O beautiful one, I have come to get some sacred alms from you."
तो कृष्ण भगवान ने बोला कि हे स्त्री, मैं आपसे कुछ दान मांगने आया हूँ.
Whereupon she angrily threw a dense lump of mud into my begging pot.
और उस स्त्री ने उस क्रोध में आकर के मेरे कमंडल के अंदर मिट्टी का ढेला फेंका.
Uh-oh, this is not very good.
तो ये तो अच्छा नहीं दान दिया उसने.
O Narayana, I simply turned around and went back to my personal abode, astonished at this fine Brahmani's peculiar mixture of great magnanimity or greatness and austerity and charity and all that, and but also at the same time stingy. Miser, Vipranath,
okay.
And magnanimous at the same time. He was, Krishna was very surprised.
तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं अपने पीठ मोड़ के वापस अपने धाम में आ गया और बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि ये ब्राह्मणी एक तरफ तो इतनी उदार चरित्र वाली है और एक तरफ इतनी कृपण भी है।
So finally, this lady reached the spiritual world in her self-same body. So great were her efforts of fasting and charity.
तो अंत में ये जो तपस्विनी थी ये उसी शरीर सशरीर आध्यात्मिक जगत में पहुंची क्योंकि उसके उपवास और दान देने का इतना प्रयास था उसका।
And because she had indeed offered me a lump of mud, I transformed that mud into a beautiful home.
तो क्योंकि उसने मुझे एक कीचड़ का मिट्टी का ढेला दान में दिया था, मैंने उस मिट्टी के ढेले को एक बहुत ही सुंदर घर में परिवर्तित कर दिया। तो वैकुंठ लोक के अंदर तो भगवान कह रहे नारद मुनि को कि ये जो गृह था वैकुंठ लोक में वो उसी प्रकार था जिस प्रकार से वो जो मिट्टी थी जिसके अंदर कोई भी अनाज नहीं थे, उसी प्रकार से जब वो स्त्री घर में पहुंची तो उसने देखा कि उसके अंदर कोई भी फर्नीचर नहीं था, कोई भी सजावट नहीं थी, केवल वहां पे एक ढांचा था मकान का बस।
So she therefore approached me with great anger and said, I have fasted repeatedly on so many auspicious occasions, making my body weak and thin. I have worshipped you, prayed to you so many different ways, for you are truly master and protector of the universes.
तो उसने मेरे को बहुत ही क्रोधित होकर बोला कि मैंने इतने सारे उपवास आपकी प्रसन्नता के लिए रखे, अपने शरीर को मैंने यातना भी दी, मैं दुर्बल हो गई थी, बहुत ही कमजोर हो गई थी और बहुत सारे अवसरों पर मैंने आपसे प्रार्थना की, आपकी उपासना की कि आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और रक्षक हैं।
Despite all of this, there's no food or wealth to be seen in my new home.
फिर भी इतना करने के बाद भी मैं देख रही हूँ कि मेरे नए घर के अंदर कोई भी धान अनाज नहीं है और कोई भी संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, कोई भी धन संपत्ति नहीं है।
Jnanardana, kindly tell me, why is this?
तो हे जनार्दन भगवान आप बताइए कि ऐसा क्यों है?
Krishna replied, please return to your house. Sometime later, the wives of the devas will pay you a visit out of courtesy to see the new arrival, but do not open your door until they have described you the glories and importance of Satyala Kadasi.
तो भगवान ने बोला मैंने बोला कि अपने घर जाओ और कुछ समय बाद देव पत्नी आपके यहाँ पे आएंगी और देखने के लिए कि कौन नया व्यक्ति आया वैकुंठ पर, लेकिन अपने दरवाजे तब तक मत खोलना जब तक तुम मैंने सत्यला एकादशी की महात्म्य का वर्णन न कर सको।
Hearing this, she returned to her house. Eventually, the devas' wives arrived there, and in unison said, "Oh, beautiful one, we have come to have your darshan."
तो वो अपने घर वापस चली गई और कुछ समय बाद में देवपत्नियां वहाँ पे आईं और सबने एक साथ बोला कि हम आपका दर्शन प्राप्त करने आई हैं।
Oh, auspicious one, please open the door to your house and let us see you.
हे सौभाग्यवती, कृपा करके अपने घर के दरवाजे खोलिए और हमें आपका दर्शन प्राप्त करने दीजिए।
The lady replied, "Oh, most dear ones, if you want me to open this door, you will have to describe to me the merit one obtains by observing the sacred fast of Satyala Ekadasi."
तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि आप सब यदि चाहते हैं कि मैं दरवाजा खोलूं तो कृपा करके मुझे Satyala Ekadasi के उपवास के महात्म का वर्णन कीजिए।
But not one of the wives of the devas responded.
लेकिन उनमें से किसी एक भी देव पत्नियों ने उत्तर नहीं दिया।
Then later, one of the wives nicely explained the sublime nature of this sacred goddess. Came back again.
तो फिर कुछ सब देवते चले गए, लेकिन कुछ समय बाद उनमें से एक माताजी वापस आई और उसने जो है Satyala Ekadasi के सुंदर के पवित्र महत्व को जो है उस माताजी को बताया।
And when the lady at last opened the door, they saw that she was neither a demigoddess, a Gandharva.
तो तो जब उस माता जी ने उस ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सभी देवपत्नियों ने देखा कि ना तो वो कोई देवी है, ना गंधर्वी है, ना कोई राक्षसी है, ना कोई नागपत्नी है, वह तो एक साधारण मनुष्य है।
She was just an ordinary human lady.
वो एक साधारण मनुष्य स्त्री है।
This is in Vaikuntha, keep in mind. This means this whole pastime was arranged by Yogamaya, otherwise one cannot appear to be an ordinary human being in Vaikuntha.
तो ये सब लीला जो है वैकुंठ के अंदर हुई है और जानना चाहिए कि ये योग माया द्वारा निर्धारित की गई है।
So then from that day on the lady observed Satya Lakadasi, which awards all material enjoyment.
तो उसके बाद से जो ब्राह्मणी थी वो सत्यला एकादशी का उपवास करने लगी।
So that rare soul who performs acts of charity, such as giving away sesame in the right devotional mood, will become completely free from all sinful actions and go back to home, back to Godhead.
तो जो कोई भी इस दिन निस्वार्थ भाव से तिल के दान, वस्त्र, भोजन इत्यादि अपनी क्षमता अनुसार दान में देता है तो वह इस जीवन के बाद में वो को बाद में मुक्ति प्राप्त करेगा।
Conclusion by this was a conclusion given by Pulastya Muni Rishi.
तो इस ये निष्कर्ष था पुलस्त्य मुनि का।
We have a small amount of time left, so we'll read a little bit from Lilamrita.
तो अब हमारा थोड़ा समय है जिसमें हम लीलामृत से पढ़ेंगे।
न्यूयॉर्क सिटी, जुलाई 9, 1976.
न्यूयॉर्क सिटी, 9 जुलाई 1976.
Jayananda was driving the car.
जयानंद कार चला रहा था।
तमाल कृष्ण गोस्वामी और रामेश्वर were also there.
अमाल कृष्ण गोस्वामी और रामेश्वर स्वामी भी साथ में थे।
They picked up Srila Prabhupada and Hari Sari at the LaGuardia Airport in New York.
तो उन्होंने न्यूयॉर्क के लागाड़ी हवाई अड्डे से श्रील प्रभुपाद हरी सौरी को कार में बैठाया।
Of course, Hari Sari was Srila Prabhupada's personal servant at that time.
हरी सौरी प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के सेवक थे उस दौरान।
And they proceeded towards Manhattan.
जब वो मैनहट्टन की ओर बढ़ने लगे।
Manhattan is the prestigious, most prestigious area of New York.
तो न्यूयॉर्क का सबसे जो prestigious colony है उसको बोलते हैं मैनहट्टन।
So Prabhupada asked his disciples that things are going on here nicely.
तो श्री प्रभुपाद ने सबसे पूछा यहाँ सब ठीक से चल रहा है ना?
तो Mahakrishna replied that everything had just really begun. You will see that all the work is just in progress.
तमाम कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभी तो हर चीज यहाँ आरंभ ही हुई है। उसने कहा आप देखेंगे कि सारा कार्य प्रगति पर है।
Yes, said Srila Prabhupada, manage nicely. Krishna is giving us everything.
Srila Prabhupada ने कहा हाँ ठीक से प्रबंध कीजिए। कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है।
Now this was not a Desha Kalapatra statement by Prabhupada.
तो ये जो सिद्धांत है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कहा गया है ये कोई देश काल पात्र सिद्धांत नहीं है।
So you have to understand, everything in Krishna consciousness, in addition to being common sense, also is full of mystic conceptions of the interaction of the devotees and the Lord.
तो कृष्ण भावनामृत में ये जानना चाहिए कि भगवान और भक्तों के बीच का जो संबंध है वो केवल कृष्ण भाव जो कुछ होता है वो ना केवल कॉमन सेंस।
So Prabhupada said, manage nicely. Krishna is giving us everything. There's no scarcity. So we have to meditate on this.
कॉमन सेंस और साथ साथ जो है चमत्कारों से पूर्ण रहता है। तो जब श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा दी गई सारी वस्तुओं का आप ठीक से प्रबंधन कीजिए और कृष्ण और देंगे तो इस पे हमें बड़ा ध्यान करना चाहिए।
We should see the scarcity as our defect.
तो जब हमारे पास कोई अभाव हो तो उसे हमें हमारी कमी देखनी चाहिए।
We should not just blame it on, oh, it's a political world, political situation, everything's going out.
हमें उसे परिस्थितियों पे उसका उ, उ, उसका उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, परिस्थितियों को पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए.
Oh, this recession.
कि अरे इस समय तो मंदी चल रही है.
So the point here, if we listen carefully to what Prabhupada's saying, we should not just blame it on sociology and politics. We should take responsibility. Yes, the defect is in my seva. We must. That's my show. That's my show.
तो हमें प्रभुपाद जी के इन शब्दों पे विचार करना चाहिए और समाज सामाजिक या आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए. हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि दोष हमारी सेवा के अंदर है, कमी हमारी सेवा में है.
So I'll read a statement by Prabhupada again. Manage nicely. Krishna is giving us everything. There is no scarcity.
तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक से प्रबंध कीजिए, कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है.
As the car approached the colossal, colossal means very large, Brooklyn Bridge, Srila Prabhupada inquired, that is Brooklyn Bridge, I think. Sometimes I was coming here and sitting down near the bridge.
जब उनकी कार विशाल ब्रुकलिन पुल के पास पहुंची तो प्रभुपाद ने कहा मेरी समझ में यही ब्रुकलिन पुल है. मैं कभी यहाँ आया करता था और पुल के पास बैठा करता था.
Near the water, asked Tamal-Krishna.
Tamal-Krishna ने पूछा जल के निकट.
They were fascinated to hear about Srila Prabhupada's early activities alone in New York.
वे न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के पहले के कार्यकलाप के बारे में सुनकर अत्यंत मुग्ध थे.
Prabhupada replied, I mean, they were fascinated here. So you were sitting near the water, they asked him.
तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि आप जल के पास बैठा करते थे?
Yes, that river, which would be the Hudson River, the famous river that goes through New York City.
प्रभुपाद ने कहा हाँ उस नदी के किनारे. तो प्रभु महाराज कह रहे हैं कि वह निश्चित हडसन रिवर होगी जो कि न्यूयॉर्क की फेमस नदी है.
Because I was on that Bowery Street, it was not very far away.
हाँ, क्योंकि मैं बावरी स्ट्रीट में रहता था और वह यहाँ से बहुत दूर नहीं है.
So I was coming, walking there and sitting under the bridge and thinking, when shall I return to India?
इसलिए मैं यहाँ आया करता था, घूमा करता था और पुल के नीचे बैठकर सोचा करता था मैं भारत कब लौटूंगा.
He asked about other places, almost like inquiring about old friends, the Fulton Street subway station, Chambers Street.
प्रभुपाद हंसने लगे और उन्होंने अन्य स्थानों के बारे में पूछा, जैसे कोई अपने पुराने मित्रों के बारे में पूछ रहा
हो. Fulton
Street subway station और Chambers Street.
Places in New York City that Prabhupada was very familiar with.
तो ये वो स्थान हैं न्यूयॉर्क सिटी के जहां से प्रभुपाद काफी परिचित थे.
Tamal-Krishna Maharaj told Prabhupada that the ISKCON Center was not far from the Empire State Building and that he would be able to get a nice view of it from his room on the 11th floor.
Tamal-Krishna ने प्रभुपाद को बताया कि Empire State Building ISKCON केंद्र से दूर नहीं है और उन्हें 11वीं मंजिल स्थित अपने कमरे से इसका सुंदर दृश्य दिख सकेगा.
Our building, said Tamal-Krishna, is right in the midst of the theater, restaurant and entertainment section of the city.
Tamal-Krishna ने कहा हमारी इमारत शहर के थिएटर रेस्टोरेंट तथा आमोद प्रमोद विभाग के बीच में है.
Well, this must be in reference to the fact that ISKCON used to own a skyscraper building there.
तो यहाँ मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में श्रीमान ISKCON के भक्त जो हैं एक बहुत ऊंची गगनचुंबी इमारत उनके पास में थी.
But they sold it.
लेकिन बाद में उन्होंने इस इमारत को बेच दिया.
So. Our building, said Tamal-Krishna, is right in the midst of the theaters, restaurant, and entertainment section of the city.
Tamal-Krishna ने कहा हमारी इमारत शहर के थिएटर, रेस्टोरेंट तथा आमोद प्रमोद विभाग के बीच में है.
In New York, Srila Prabhupada said, I feel a little at home because first I came here, I was loitering on the street here and there from 1965 to September to July 1967. I continually stayed in New York.
प्रभुपाद ने कहा न्यूयॉर्क में मुझे घर सा लगता है क्योंकि पहले मैं यहीं आया था. मैं सड़क पर इधर उधर घूमा करता था. मैं सितंबर 1965 से लेकर जुलाई 1967 तक निरंतर न्यूयॉर्क में रहा.
Tamal-Krishna Maharaj gave the class this morning, said Ramaswar.
Rameshwar Swami ne kaha, aaj prata tamal Krishna Swami ne kaksha li.
He was explaining that we cannot understand the good fortune of this city that you have come here.
वे बता रहे थे कि क्योंकि आप इस नगर में आए हैं हम इसके सौभाग्य को नहीं समझ सकते।
Prabhupada said, yes, when I decided that I shall go to a foreign country, I never thought of going to London.
प्रभुपाद ने कहा, हाँ जब मैंने निश्चय किया कि मैं विदेश जाऊंगा तो मैं लंदन जाने का कभी नहीं सोचा।
Generally, the sadhus from India they would go to London.
सामान्यतः लोग लंदन जाते थे किंतु मैंने सोचा कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा।
But I thought, no, I shall go to New York.
मैंने सोचा कि मैं लंदन जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा।
Very progressive, Tamal Krishna commented.
तमाल कृष्ण टिप्पणी की, बहुत प्रगतिशील।
I do not know, Prabhupada laughed.
प्रभुपाद हंसे, मैं नहीं जानता था।
It's Krishna's dictation. Listen carefully.
यह कृष्ण का आदेश है।
I could have gone to London, it was nearer.
मैं जा सकता था क्योंकि लंदन अधिक निकट था।
But I thought, no, I shall go to New York.
किंतु मैंने सोचा नहीं, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा।
Sometimes I was even dreaming that I'd gone to New York.
कभी-कभी मैं स्वप्न देखता कि न्यूयॉर्क गया।
So here we see that Prabhupada is, I mean, he was not joking, you know, he was in a light mood, but he's not joking when he said that Krishna told him to go to New York. So that's not, although he was a light conversation, we shouldn't take it there was some casual thing. Krishna told Prabhupada to go to New York. We have to get it straight.
तो हालांकि प्रभुपाद ये विनोदपूर्ण स्वभाव में कह रहे थे लेकिन ये कोई हल्की बात नहीं है कि कृष्ण ने प्रभुपाद को बोला न्यूयॉर्क जाने के लिए
And Krishna will tell even so-called ordinary devotees, there's no such thing as an ordinary devotee. But, I mean to say, devotees of a lesser quality of devotion, Krishna also gives dictation.
तो चाहे नए भक्त भी क्यों ना हो लेकिन कृष्ण ऐसे भक्तों को भी जो है अंदर से डिक्टेशन देते हैं या उनको बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
So we should aspire more and more after receiving very pure inner dictation from Krishna, so that the quality of our service can become better and better.
तो हमें कृष्ण के इस प्रकार के आदेश के ऊपर इनर डिक्टेशन के ऊपर आंतरिक डिक्टेशन के ऊपर जो है निर्भर रहना चाहिए तो हमारे भक्ति की क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी सुधर प्रगति होती जाएगी
We'll stop there. Any questions, comments?
क्या नहीं आपका प्रश्न या टिप्पणी?
Okay, thank you very much. Jaga Guru Sri Prabhupada ki jai. Shri Kalsi ki jai. Shri Raghuraman Krishna Balaram ki jai. Jita Gaur Pramanandi Hare 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 Hare
Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare